वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतयातर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तवैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिके। सबसे प्रथम मैं अपने परमाराध्यतम गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवती प्रणति पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में भी कोटि कोटि बार दंडवत प्रणति पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात श्रोत्रिवृंद त्रिदंडी सन्यासीगण ब्रह्मचारीगण और श्रोता कृष्ण भक्त कृष्ण कथा पिपासु भक्तगण यथा योग्य सब लोगों को मेरा आशीर्वाद और नमस्कार स्वीकार हो। अब इत्थं भगवतो गोप्य श्रुत्वा वाच्य सुपेशल। कृष्ण ने कहा प्यारी गोपियों तुम मेरी प्रिया हो, मैं तुम्हारा प्रिय हूं, इसलिए तुम हमारी छिप जाने से कोई ईर्ष्या देत मत रखना। मैं तुम्हारा सर्वदैव ऋणी हूं और ऋणी रहूंगा। ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर भी आयु मिल जाए तो मैं तुम्हारे ऋण से नहीं ऋण होऊंगा। कृष्ण की ऐसी सुपेशल ठग भरी और पहेली भरी बातों को सुन करके गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गईं। उस समय पक्षा विपक्षा तटस्था सहित जितने प्रकार की गोपियां थी सभी प्रसन्न हो गईं और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भी छोड़ करके अब कृष्ण के साथ में नित्य और गीत करने लगी। कृष्ण को चारों तरफ से घेर लिया और हाथों में हाथ मिलाकर एक एक कृष्ण एक एक गोपी नित्य कर रहे हैं। दो दो गोपी एक एक कृष्ण कह लो या दो दो कृष्ण एक एक गोपी बीच में हाथों में हाथ रखकर और नित्य और गान करने लगे। गोपियां संगीतज्ञों की गुरु हैं। 16,000 प्रकार के 108 प्रकार के राग रागिनियां हैं। सब गोपियों के चरणों की झंकार से निकले हैं। शंकर जी नारद जी इनके क्या है आरोह और अवरोह मूर्छना युक्त स्वरों को कीर्तनों को से को सीखा ये राधा जी और उनके सहेलियों से। राग रागनिया उनके पैजेब की झंकार से ही निकले हैं। इसलिए साधारण मत समझो गोपियां। कृष्ण से भी नित्य गीत में गान में सौंदर्य में अधिक हैं, इसलिए कृष्ण को मुग्ध करती हैं, अन्यथा कैसे मुग्ध करती। किंतु कृष्ण भी कम नहीं हैं जो इन सबको भी ऐसे आकर्षित कर लेते हैं, उनके बिना एक क्षण भी रहे देख नहीं सकती हैं, इनकी लादनी शक्ति होने से। इसलिए कृष्ण के ऐसे सुंदर मधुर वचनों को सुन करके गोपियाँ प्रसन्न हो गई। अब नित्य गान आरंभ हो गया। प्रत्येक गोपी सोच रही है कृष्ण हमारे साथ ही नित्य कर रहे हैं। उस समय कृष्ण ने जो एक एक गोपी के बीच में एक एक हुए साथ, दो गोपियों के बीच में एक या दो कृष्ण के बीच में एक, ये तो बड़ा भारी ऐश्वर्य है। योगियों का जो योग होता है उसमें एक यदि 10 20 50 100 उनकी मूर्ति हो जाएगी, एक साथ सभी हाथ उठाएंगे, एक साथ बोलेंगे, उन लोगों का ऐसा, और कृष्ण का कैसा है, उनकी एक एक मूर्ति एक एक साथ में
विभिन्न प्रकार का
विभिन्न कार्य करते। वहाँ द्वारका में 16,000 गोपियों के 16,108 पटरानियों के साथ में किसी घर में विवाह हो रहा है, किसी घर में दक्षिणा दे रहे हैं, किसी घर में यज्ञ हो रहा है, किसी घर में हवन हो रहा है, किसी में किसी से विवाह हो रहा है, ऐसे विभिन्न। यहाँ पर भी जितने कृष्ण हैं सभी कृष्ण ही हैं, उनका प्रकाश विग्रह नहीं है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, ऐश्वर्य है, किंतु कृष्ण एक ही कृष्ण। जैसे एक जलते हुए लकड़ी को ले लो और ऐसे घुमाओ तो वो गोलाकार चक्र बन जाता है, ऐसे एक ही कृष्ण एक ही समय इतनी जल्दी से एक एक गोपी के पास में जाते हैं। जब राधिका जी देखती हैं कि सब गोपियों के पास, और गोपियां समझती हैं कि एक को छोड़ करके इतनी जल्दी आ जाते हैं, वो समझती कि मेरे ही पास में है। इस तरह से नित्य ज्ञात आरंभ हुआ। विमान से आकाश भर गया, पुष्प वृष्टि होने लग गई, अपने आप देवताओं के तंबूरे इत्यादि बजने लग गए, ढोलक बजने लगा, मृदंग बजने लगा अपने आप बिना बजाए, और पुष्प की वृष्टि होने लगी। अब गोपियों ने, कृष्ण ने एक स्वर आलाप किया, कृष्ण भी तो सुर सम्राट हैं, बहुत सुंदर गान करते हैं। कृष्ण ने गारम किया, सारे ग म प पर्यंत ले गए, पांच स्वर तक, और दूसरी गोपी आई उसी स्वर को, उसी गान को कृष्ण का नाम लेकर के, सारे ग म प ध नी एकदम ले गई। कृष्ण शाबाश शाबाश शाबाश। कृष्ण ने उसको शाबाश शाबाश किया,
साधु, साधु।
वो प्रसन्न हो गई। ललिता विशाखा ने कृष्ण के उसी स्वर को ध्रुपद धमार जानती होगी लोग, ध्रुपद और धमार में आरोह अवरोह मूर्छना स्वर से गाया। कृष्ण सुन करके और प्रसन्न हो गए। और राधिका जी आई, उन्होंने तो सात स्वर को भी भेद करके इतने जोर से सुंदर रूप से मधुर स्वर से गाया, कृष्ण शाबाश शाबाश करते हुए अपने गले की माला उनको दे दी। गोपियां बड़ी खुश हो गईं। कोई गोपी थक गई, थक करके उसके जूड़े से फूल गिरने लगे, पसीने मुख पर आ गए, कृष्ण के कंधे पर अपना हाथ रख दिया और विश्राम करने लगी। कृष्ण ने अपने दुपट्टे से उसका मुख का पसीना एकदम साफ किया। इस तरह से रासलीला हुआ। और ये सूट देन आई विल
So Sri Gurudev is continuing the explanation of the Rasa Leela pastime. And Krishna told the gopis after he appeared in front of him, he had disappeared, he came back, and the gopis asked a puzzle from him that, and this is what Gurudev explained yesterday. So after that, Krishna said that you are my beloved. And I am your beloved.
Yes.
Therefore, I have not gone anywhere. I had not disappeared. I was hiding around here only and trying to relish your mood of separation. So therefore, you should not feel envious and you should not feel disturbed. And I am always indebted to you. And even if I have the life of Brahma, still I would not be able to repay back your debt. So when the gopis heard this very tricky words of Krishna, they started smiling.
There.
And all the gopis from different groups, whether they were Swapaksha, Vipaksha or Tatastha, they left all their enmities and they started smiling and started dancing and singing. They made a circle around Krishna and holding each other's hands and singing, they all started the Rasa Leela. So Krishna was there with each gopi. As they were dancing, one could say that for between two gopis there was Krishna, or between two Krishnas there was one gopi each. But whichever way I think, there was one Krishna with each gopi, and they were dancing. And they were singing so beautifully because the gopis are guru of even the best singers. There are 16,108 type of rags. 108 types of different rags in Indian classical music. And Gurudev is explaining that where have these rags originated from? These have originated from the sounds of the pajed, the
ankle belt
that the gopis hear on their feet. So this is the origin of all the notes and all the different combinations of musical notes in Indian classical music. And Shivji, Naraji, all of them, you know, Aruva and Aruva, ascending and descending notes, they have all learned these different forms of music from Sri Radha and her Sakis only. So therefore the gopis are not ordinary personalities. They are even more expert than Krishna. But Krishna is no less either, because he is so beautiful that he attracts all the gopis. So even though he's not as expert as the gopis, but he's not less either. They cannot live even 1 second without him. So then Gurudev explained that with each gopi, Krishna was dancing. Now this is if we say that Krishna manifested in so many different forms, then there is some mood of opulence there. Just like when the rishis, the yogis, they, by the dint of their tapasya, they can actually manifest themselves in many different forms. So one yogi can become 10, 50 or 100 different forms. But when one of their form raises the hand, then all the remaining 100 forms that they have manifested into will also raise their hands. So they are exactly copies of each other. So whatever activity one performs, all the remaining copies will perform the same activity. But Gurudev is explaining, Krishna's expansions are not like this. So just like in Dwarka, he has 16,100 queens, and each one of them have their own palace. And in some queens' palace, Krishna, they are having a wedding ceremony. In some places, they are performing a yajna. Some places, he is giving charity. So in different places, he is simultaneously performing different pastimes. But here in the Rasa Leela, Krishna did not expand into so many hundreds of thousands of forms, but actually, it was the same Krishna who was dancing with all the gopis. Just like if you take a wood and it is on fire, and if someone rotates it very fast, so it looks like if it is a continuous circle of fire. So similarly, Krishna, being a very expert dancer, was dancing so fast and moving so fast that each gopi was thinking that Krishna is dancing only with him. So this is the Madhurya mood of Vrindavan. So from the sky, the demigods started showering the flowers, and they also started singing on the mridanga and started accompanying the singing of the gopis with so many musical instruments. Krishna is also Sur Samrat. He is the king of nice singing. So he started singing Sa Re Ga Ma Pa. But at the fifth note, he stopped. But then another gopi started singing, and she went Sa Re Ga Ma Pa Dha Ni Sa. So she went all the way up to the higher notes. And when Krishna heard this music, this very sweet singing, he said, Sadhu, Sadhu, very good, very good. And then Lalita and Vishakha, they also started singing so many different kinds of rags, like Drupad, Dhamal, in different ascending and descending notes. And then when Srimati Radhika sang in her very sweet voice, Krishna was completely enchanted. And then he took off the garland that he was wearing and put on Srimati Radhika's neck. And then he started wiping the sweat on her face with his cloth.
कृष्णा इन गोपियों के साथ में नृत्य और गान जो कर रहे हैं, उनके हाथों में हाथ लेकर नृत्य कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं मानो कोई व्यक्ति अपनी छाया के साथ में खेल रहा हो। बच्चे कभी कभी अपनी छाया के साथ में खेलते हैं, कोई भी आसक्ति कुछ नहीं। ऐसे ही कृष्ण मानो निर्विकार होकर के खेल रहे हैं। शरत काल, स्वच्छ आकाश, जमुना जी का पानी बहुत ही मीठा और सरस और
निर्मल
शांत, कोई भी मल नहीं। चारों तरफ बेली चमेली जुई के फसब फूल खिल रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, कोयल भी कुहू कुहू कर रही है, मयूर नृत्य कर रहे हैं। अकेली कृष्ण और करोड़ों गोपियाँ, अद्भुत लक्ष्मी जी से भी सुंदर, उनके साथ में नाच गान कर रहे हैं, किंतु कैसे काम को अपने कंट्रोल में कर करके, तनिक भी विकार उनको नहीं हुआ। जहाँ पर शंकर जी मोहिनी का रूप देख करके उसके पीछे पीछे नंगे दौड़ पड़े, ब्रह्मा जी ने कन्या एक रचना की और उसी के प्रति आसक्त हो गए, इंद्र गौतम की नारी अहिल्या के प्रति आसक्त हो गए, चंद्रमा अपने गुरु बृहस्पति के स्त्री के साथ, काम ने सबको जय कर दिया, किंतु यहाँ पर काम के ऊपर कृष्ण का यह विजय है। ये सब स्थितियां रहने पर भी कामोद्दीपक एकदम कृष्ण निर्विकार हो करके छाया की भांति वो खेलने लगे। यहाँ पर काम पर विजय उनकी लीला है, और दूसरी अन्याराधितो न्यूनम, इसने हरि की आराधना की है जिसको कृष्ण एकांत में लेकर के गए हैं। यह राधा जी की विशेषता है। और सब गोपियों को छोड़ करके बासंतरास में भी सबके सामने छोड़ करके राधा जी के साथ में चले गए। इसलिए राधा जी की उन्होंने सबसे अपनी प्रिया के रूप में उन्होंने स्थापित किया है। ये दो चीजों के लिए रास हुआ। रास नहीं होने से राधिका जी की सर्वश्रेष्ठता, सब प्रियाओं में श्रेष्ठ, ये साबित नहीं होता। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के एक रात तक, और मनुष्यों की गणना से 1,000 वर्ष तक की एक रात रही, और उसमें ये सब सारी रातियां मिल गईं, और कब खत्म हो गई किसी को पता नहीं चला, उन गोपियों को न कृष्ण को। उस समय में रास जबकि समाप्त हो गया ऐसा, तब गोपियों ने जाने की घर इच्छा नहीं की, किंतु कृष्ण ने योग माया के द्वारा प्रेरणा करके उनको घर में लौटा दिया। और जब घर लौटी तो उनके पतियों ने, भाइयों ने, पिता ने, माता ने कोई भी कुछ नहीं कहा। क्यों? उसके पति, भाई, बंधु लोग देखते थे जो मेरी स्त्री, मेरी बेटी मेरे पास ही दिन रात रहती है। क्यों? वो तो कृष्ण के साथ में थी। योग माया ने उनकी मूर्ति बना करके उनके पतियों, भाइयों, पिता इत्यादि के साथ में, ये योग माया की लीला थी, इसलिए उन लोगों ने कुछ नहीं किया। बड़े आनंद से घर गई, किंतु आनंद से नहीं, दुख से कृष्ण को छोड़ करके जाना नहीं चाहती हैं। इतना सब सुन करके महाराज परीक्षित ने कहा, क्यों कहा? वो सब कुछ लोग थे कर्मी ज्ञानी, उनके संदेह को दूर करने के लिए कहा। वो बोले, कृष्ण स्वयं परब्रह्म है, धर्म की स्थापना के लिए वो जगत में आते हैं, विशेष करके वर्णाश्रम धर्म का। फिर उन्होंने, धर्म के सेतु हैं, धर्म के पुल हैं, उसके प्रमाणिक व्यक्ति हैं, क्योंकि धर्म स्थापन करने के लिए आए। और किस प्रकार से उन्होंने ऐसा गर्हित कर्म किया, दूसरे की स्त्रियों को बुला करके उनके साथ में रास डांस किया, ये तो ठीक नहीं। कृष्ण जदुपति और आप्त काम है, उनको कोई कामना ही नहीं है, आत्मा राम है, फिर ऐसा कर्म क्यों किया? किम अभिप्राय, क्या अभिप्राय है? तब सुखदेव गोस्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ देखो, जो तेजियान व्यक्ति हैं, तेजस्वी हैं, जैसे अग्नि है, सूर्य है, आग सब मैला पैखाना टट्टी खा करके भी अपवित्र नहीं होती, और सूर्य गंदी चीजों से भी, पेशाब इत्यादि से जल सोख लेते हैं और साफ करके फिर बादल के रूप में होकर के मेघ के रूप में बरसा देते हैं। तो ये काम किसका है? तेजियान लोग हैं, उन लोगों के लिए कुछ दोष मत देखो। कृष्ण तो उन सबके भी रचयिता और उससे भी ऊपर वाले हैं, इसलिए तेजियान व्यक्तियों के इसमें दोष नहीं होता है। देखो, किंतु ऐसा होने पर भी कोई मन से भी रासलीला जैसा आचरण न करे, दूसरों की स्त्रियों से या दूसरी स्त्रियां दूसरे पति के साथ में न रहें, खबरदार न रहे, और वैसे ही यदि आचरण करने की चेष्टा करते हैं उनका विनाश हो जाता है। जैसे शंकर जी हैं, समुद्र मंथन से विष निकला, जगत त्राही त्राही कर उठी, भगवान विष्णु आकर के शंकर जी को, हो जाए जगत की रक्षा कीजिए, विष पी लिए, और विष पीने से उनका यहाँ पर नीला हो गया, क्योंकि भीतर में तो कृष्ण है, गले में ही विष को रख लिया, इसलिए नीलकंठ महादेव हो गए, उनके लिए भूषण हुआ। और जो लोग हजम नहीं कर सकते विष, थोड़ा सा भी विष खा करके वो मर जाएंगे, इसलिए इस लीला का आचरण न करो। ईश्वर के वचन हैं, वो परम सत्य हैं, और कभी कभी उनका आचरण उनके वचन के अनुसार में होता है, सब समय नहीं, इसलिए उनके जो वचन हैं, जो कि कहते हैं और वैसा करते हैं, तब तो ठीक है, नहीं तो केवल उनका उपदेश सुनो। कृष्ण ने जो आचरण किया रासलीला मत करो। कृष्ण कौन है ये पहले समझो। गोवर्धन को कौन उठा सकता है? पुतनाघासुर को कौन मार सकता है? नंद बाबा को सांप अजगर निगल रहा था, छू दिया और वो दिव्य देहधारी हो गया, ये कौन साधारण आदमी कर सकता है? ये भगवान का तृप्त नहीं कर सकता है। इसलिए उनके वचन सत्य हैं, फिर भी उनका आचरण मत करो। जो आचरण उनके वचन के युक्त हो वो करो। तब विक्रीडितम बजुभि दंच विष्णु श्रद्धान्य तो अनुसृणियात अथ वर्णीद भक्ति परां भगवती प्रतिलभ्य कामो हृदय रोगमाशु अपि आश्चर्यणी नधीर। वो जो कोई व्यक्ति अनुसृणियात श्रद्धा के साथ में, दृढ़ विश्वास के साथ में आदर पूर्वक श्रवण करेगा, कहां से? अपने गुरु और सुखदेव गोस्वामी के लाइन में वैसे ही भक्तों से सुनेगा, बार बार सुनेगा अनु, और उनके अनुगत्य में वर्णन करेगा। जैसे व्यास से सुखदेव गोस्वामी ने सुना, मधुर कंठ से इसी का परीक्षित की सभा में गान किया, और उनकी कथा सुनकर के सुत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को बतलाया। ऐसे खूब श्रद्धा के साथ में सुने यदि कोई, निरंतर सुनता है और वर्णन करता है, भक्ति परम भगवती, पहले भक्ति भगवान की, पराभक्ति प्रेमा भक्ति कामानुगा भक्ति उसके हृदय में आती है ना, कामानुगा। और उससे क्या होता है, हृदय के जितने भी हृदय के काम इत्यादि हैं, अनर्थ है, सभी कुछ दूर हो जाते हैं। धीर कहा, जो लोग धीर है, धीर मैंने ऐसा विश्वास करते हैं कि पहले हरि कथा ये रासलीला सुन करके काम अपने आप दूर हो जाएगा, वो तो धीर है। और जो कहते हैं कि नहीं, पहले हरि कथा सुन करके अनर्थ दूर करो और अनर्थ दूर करने के बाद में तब इसको करो, वो उनके चरणों में अपराधी हैं भागवत के, उनको नहीं होगा कुछ। किंतु जो दृढ़ विश्वास के साथ में निरंतर गुरु वैष्णव के मुख से भागवत सुन करके हरि कथा का हृदय का काम रोग दूर हो जाएगा। और यदि नहीं काम दूर होता है और विवाह करने की इच्छा होती है और विवाह करता है, तब मतलब क्या, न तो गुरु का आदेश पालन करता है, न वैष्णवों का आदेश पालन करता है, उच्छृंखल है। उसको हरि कथा, जैसे वृंदावन में कथा कहते हैं सब मायावादी लोग भी, सभी लोग उनका कुछ नहीं होता, पैसे के लिए करते हैं, बस उनको पैसा मिल जाता है, बस हो गया सुना, उनको भगवत भक्ति नहीं होगी, ऐसे ही समझो। इस प्रकार से कहते हुए उन्होंने इसको रासलीला को समाप्त किया। इसलिए आप लोग भी इसको सुना, हृदय में धारण कीजिए और इसका सब समय स्मरण कीजिए। हृदय में यदि कुछ रहेगा काम रोग, ये दूर हो जाएगा, कृष्ण की पराभक्ति मिलेगी, यही इसकी फुल श्रुति है। कृष्ण ने अर्जुन का सारथी हो करके सब दलों के सब वीरों को मारा और सब लोगों को, जैसे महाभारत के युद्ध में भीष्म द्रोण इत्यादि जैसे लोगों का बल हर दिया, और भी उन्होंने कार्य किए, किंतु वो भगवान थे, बड़े दयालु हैं, उनकी लीलाएं बड़ी पावरफुल हैं, उनसे भी ब्रज की लीलाएं और पावरफुल हैं। और उन लीलाओं में यशोदा जी ने कृष्ण को बांध दिया, इसको सुनने से और पावरफुल हैं। और गोपियों के साथ में कृष्ण की ये जो लीला है, ये तो चूड़ा चक्रवर्ती लीला है। इसका फल भी ऐसा है, इसके श्रोता और वक्ता भी वैसे ही होंगे। साधारण मत समझो। गौर प्रेमानंदे बोलो।
Gurudev is explaining further that when Krishna was singing and dancing with the gopis, it was just like as if someone is playing with their own shadow. Just like sometimes a child may play with his own shadow, but he is not attached to the shadow because shadow is not real. So similarly, Krishna, without any attachment, was playing with the gopis. It was the Sharad time, and Jamuna ji, the water of Yamuna was very, very sweet. It was flowing very peacefully. Different kinds of flowers like chamari and juhi, they were blossoming, and the bumblebees were going on these flowers and making very sweet sound. And the peacocks were dancing, so the whole atmosphere was very, very sweet. Krishna then was dancing with millions and millions of gopis, and each of these gopis is many millions of times more beautiful than even Lakshmi Devi herself. But even then, even though Krishna was dancing with so many millions of gopis who were so beautiful, still he had complete control on Kamdhav. There was not even an iota of lust that appeared in his heart. Shivji, Lord Shiva, got attracted by Mohini, so much so that he started running after her naked. Brahmaji manifested his daughter and was so attracted by her beauty that he started running after her. Indra was attracted by Ahilya. Chandrama, the moon god, was attracted by the wife of Brihaspati. So many examples we have in which these great personalities got attracted, but Krishna was not at all attracted in the same way. He is nirvikar. There was no bad or lusty desires that manifested within his heart. He was just playing with them, just like someone plays with his own shadow. So this was one reason to show to the world that how Krishna is the Supreme Personality and above all these material desires. The other reason why Krishna performed the Rasleela was Anya Radhika Noonam, to show to the world the supremacy of Srimati Radhika's devotion, and that of all his beloveds, Srimati Radhika is the Supreme. So because of these two reasons, Krishna performed the Rasleela. This Rasleela lasted for one night of Lord Brahma. And one night of Lord Brahma, by human calculation, is many, many thousands of nights. But all those nights got combined in one single night, and no one came to know about that. And when that night finished, the whole night passed away. Neither the gopis realized nor Krishna, because they were so absorbed in the Rasa dance. And finally, the Rasa dance was over, and Krishna requested the gopis to go back to their homes. They, of course, did not want to go back, but by his yogamaya potency, Krishna made this desire to appear in their hearts to go back to their homes, and therefore they finally went back home. But the interesting thing was, when they went back home, neither their husbands, or their brothers, or their mother and father, no one said anything to them that where you were all night long. And the reason for that is because Yogmaya, by Krishna's Yogmaya potency, and she manifested their vikramas, their forms in the homes. So the husbands thought that their wives were home all night long, and the Mothers and fathers thought that their daughters were home all night long. The children thought they were mothers for all night long. So none of them chastised these gopis when they came back home. So Maharaj Parikshit, when after Shukadeva Goswami completed narration of Rasa Leela, then Maharaj Parikshit asked him a question. And Maharaj Parikshit is a pure devotee, so he had no doubt in his mind. But for the sake of those people in this world who are karnis and jnanis, and who will doubt about Krishna's personality as an intentions, he asked this question. The question was that Krishna is Swayam Paramham, he is the Supreme Personality of Godhead, and he appeared in this world to establish the principles of religion. He is the basis, he is the foundation of religiosities. He is one on whom the entire foundation of moral and spiritual principles is based on. So how could he perform such an abominable activity to dance with the wives and some other people or the daughters of other people in this night time? So how could he perform this? Kim Abhipraya, what was the reason for this? So Shukadeva Goswami smilingly explained that those who are tejasvi, those who are effulgent, those who are great personalities, to them these things do not apply. The example he gave was just like there is fire. Fire can burn all kinds of dirt. If there is garbage or any kind of dirty things, fire can burn all of them, but still the fire itself never gets contaminated. Similarly, the rays of the sun can soak urine or any kind of dirty water, but the sun itself does not get affected by this activity. Similarly, Krishna is much more greater, he is the Supreme Personality of Godhead himself, much greater than even the greatest of personalities. So even though he performed this, there was no vikar, there was no lust in his heart, and therefore this kind of activity is fine for the Supreme Lord. But at the same time, he explains that we should not follow these pastimes of Krishna. We can hear about them, we can meditate upon them, but we should never try to imitate these pastimes. And we should never live with the husband of wife or the wife of someone else. Anyone who tries to imitate Krishna's pastimes, he will be completely destroyed. Lord Shiva, when the ocean was churned, so a big pot of poison came out of it. As a result of which, the entire world was in great distress. And at that point, Lord Shiva drank the whole poison and kept it inside his throat. Did not let it go inside because Krishna is residing within his throat. So he kept the poison only in his throat. So Lord Shiva could do this, but if any one of his followers tries to imitate him, he is going to die. Even if we try to drink a small amount of poison, we will die. So we cannot imitate these great personalities. So the Supreme Lord, he gives many instructions and he performs many pastimes, but at some times they may be conflicting with each other. His activities may not be the same as what he is giving instructions. So when they are the same, then we can follow. But otherwise, we should only follow his instructions. So, like Krishna, he lifted, we must understand who is Krishna. He lifted the Govardhan, we cannot lift Govardhan. He kills so many demons like Putana, Aghasur, we cannot kill demons like them. He is the Supreme Lord, all his instructions are true. So we should only follow his instructions. And the devotees who hear these pastimes, especially the Rasleela of Krishna, with great respect and with great faith in the line of Shukadeva Goswami from bona fide spiritual master, if someone hears these pastimes over and over again with great faith, it is said in Srimad Bhagavatam that person will certainly obtain parabhakti, prema bhakti, kamanuga bhakti will arise within his heart. And all the lusty desires, all the anarthas will be destroyed. those people who are healed, those who are great, they understand that by hearing of Rasleela with respect and with great faith, all our bad anarthas, unwanted qualities will disappear. But those people who say that no, we should not hear these pastimes, we should first try to get rid of our unwanted desires and then hear them, they are actually committing offense at the lotus feet of these pastimes. So those people are actually offenders. So the Gurudev explained that we should very carefully hear these pastimes. So just like the devotees of Vrindavan, if we hear these pastimes, we will develop Bhagavad Bhakti. So Gurudev is saying that now this pastime, the narration of this pastime of Ras Leela is over. We should try to keep it within our heart and should try to meditate on it all the time. And as a result, the lusty desires will disappear and Krishna Bhakti will manifest. This is the sure proof of this Ras Leela. So Arjun, Krishna was the character, and he was a character for Arjun, and Krishna and Arjun killed so many people, and Krishna has, by the power of Krishna, they won the battle of Kurukshetra. So Krishna is very powerful, at the same time he is very merciful. His pastimes are very powerful, his pastimes in Dwarka are very powerful, even more powerful are his pastimes in Mathura, and even more powerful than that are his pastimes in Vrindavan. And the pastimes with Yashoda, like Dandana Leela, they are very, very powerful. But even more powerful than that are the pastimes with the gopis. So if you hear these pastimes, then certainly you will attain pure bhakti. Hare Krishna.
क्या भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए संसार को छोड़ना आवश्यक है? क्या गृहस्थ में रह करके भगवान की भक्ति नहीं होगी? विचार करने के लिए योग्य है, संसार को छोड़ना आवश्यक नहीं है। जनक की तरफ, शिवास पंडित की तरफ, भक्ति विनोद ठाकुर की तरफ में अनासक्त होकर के रह सकते हैं तो भक्ति होगी, और बाल बच्चों और संसार में अर्थ कमाने में व्यस्त रहेंगे गृहस्थी में, वो गृहस्थी से भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी, कदापि नहीं मिलेगी। यदि कोई गृहस्थ है तो गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए चले, किंतु जो लोग सन्यासी ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थी हैं, भाई उनको नीचे नहीं उतरना चाहिए, सन्यास नहीं छोड़ना चाहिए। उनको ब्रह्मचारी का जो लाल कपड़ा ब्रह्मचारी हैं, भगवान की लीला कथा सुनने से ही तो उनके लस्ट दूर हो जाएंगे, फिर क्या जरूरत उनको है। तो वो लोग को संसार में नहीं आना चाहिए, नहीं तो भक्ति सर्वनाश हो जाता है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर और जनक तो घर में रह कर के ही पाया, तो वो समझो राजा जी जनक के घर में आग लगी है और उसी में सब लोग जलने को तैयार हैं, किंतु वो अपने भगवत चिंता में है। हो सकता है स्त्री पुरुष सभी लोग जलने जा रहे हैं, उनका धन संपत्ति जल रहा है, वो चुपचाप बैठे हैं, जो भगवान की इच्छा है वही होगी। ऐसा बनो तो जनक, इसलिए ये सोच विचार करके उनका एग्जाम्पल दो और वैसे ही बनो, तब तो होगा, और नहीं तो फिर अपना जो जहां पर है स्थाने स्थिता तनुवांग मनो भी, जो गृहस्थ है गृहस्थ में, ब्रह्मचारी है वो ब्रह्मचारी, सन्यासी है सन्यासी अपने स्थान में, जो अमेरिका में है वो अमेरिका में, जो वृंदावन में है वो वृंदावन, मन ही में वृंदावन का स्मरण करें, वहीं से भगवान के वैष्णव के जो प्रिय हैं, सच्चे संत हैं, उनके मुख से हरि कथा सुनो, जो आयोजन करने वाले हैं उनको दंडवत प्रणाम करो, जो कथा सुनने के लिए श्रोता हैं उनको प्रणाम करो, वक्ता को प्रणाम करो, उस स्थान को प्रणाम करो और भागवत को प्रणाम, तब तो भक्ति होगी। अब तुम लोग का कर्ण यह है, धन्यवाद किसको किसको देना है वो धन्यवाद दो।
किसी ने प्रश्न पूछा था,
मैं
ये ट्रांसलेशन कर दें, ये ट्रांसलेशन कर देगा आगे।
ओ यस,
समबडी आस्क दिस क्वेश्चन,
समबडी आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम श्री गुरुदेव, कैन वी परफॉर्म भक्ति बाय स्टेइंग एट आवर होम, डू वी नेसेसरीली हैव टू गिव अप द वर्ल्ड एंड ओनली कैन देन समवन परफॉर्म भक्ति। सो कृष्ण गुरुदेव एक्सप्लेनिंग that to attain the Supreme Lord, to perform devotional service, we don't have to give up our family or give up this world. But at the same time, we can stay in our families and still perform devotional service. But at the same time, we should follow the example of Maharaj Janak and Shri Bhaktivinoda Thakur, who staying, even though they were staying with their family, but they were totally detached. If they can do like that, staying within the family, being totally detached, then it is no problem. We can stay and perform pure bhakti. But if we stay with the family and become completely absorbed in sense gratification, making money, taking care of our family and completely, then we will fall down from our devotional practice. And those who are grihasthis, they should follow the different principles of grihasthashrama. But those who are sannyasis, brahmacharis, they must be very careful. They should never fall down from the position. One must never give up his sannyas. Because by hearing the pastimes of the Supreme Lord, all the lusty desires will disappear. So why should one fall down from these positions? And Maharaj Janak, if we can become like Maharaj Janak, then it is very good. When at the home of Maharaj Janak, it caught fire, and everyone in his family was burning, but Maharaj Janak was subduing his bhajan. He was not at all disturbed, because he knew that if Krishna wants to save them, if the Supreme Lord wants to save them, they will get saved. So if we can have that kind of detachment, then it is fine. Otherwise, we should not use this as an excuse. So we should give this example by thinking, what does this mean to become like Maharaj Janak or like Shri Bhaktivinoda Thakur? Otherwise, we should please harness it out in whatever situation we are, whether grihastha, sannyasi or brahmachari. We should stay there, whether we are living in America or India or in Vrindavan. Staying wherever we are staying, we should try to think about Vrindavan, and we should hear these pastimes from pure devotees. We should offer our respects to the great devotees who come here and narrate these pastimes. We should give our respects to those who organize these functions. We should give our respects to those who come and hear Harikatha. And we should give respect to Srimad Bhagavatam. And then certainly we will be, will attain bhakti. God bless.